ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा की मुरली हम सबने सुनी और बाबा ने हमारा विशेष अटेंशन कई मुख्य धारणाओं पे खिंचवाया, तो आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। हमारा एक बहुत पुराना स्लोगन है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अपनी चेकिंग करो कि मनसा में हमेशा सुख की स्थिति रहती है और शांति स्वरूप की स्थिति रहती है, क्योंकि जहां पवित्रता है तो मनसा में ये दोनों बातें होंगी। और फिर बाबा ने कहा कि अगर मनसा में सुख स्वरूप की और शांत स्वरूप की स्थिति नहीं है, हलचल है, क्यों क्या का प्रश्न है, अनेक प्रकार की आशाएं हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये ऐसे क्यों हुआ, ये वैसे क्यों हुआ, तो बाबा ने कहा जहां पे इस प्रकार की उलझन है तो उन उलझनों को सुलझाने में ही लगे रहते हैं और मनसा में सुख शांति की अनुभूति नहीं होती। और जहां पे क्यों क्या के प्रश्न है वहां एकाग्रता भी नहीं होती, एकाग्रता नहीं होती तो भी सुख शांति की अनुभूति नहीं होती। तो बाबा ने कहा कि अभी तो आप बच्चे संपूर्णता के नजदीक जा रही हो और आपका जो पुरुषार्थ है वो भी बहुत सूक्ष्म होता जा रहा है, तो अभी तक तो कहते थे ब्रह्मचारी, लेकिन ब्रह्मचारी से आगे भी बाबा ने दो शब्द बोले, एक ब्रह्माचारी और दूसरा शिवाचारी। ब्रह्माचारी का अर्थ है ब्रह्मा के कदम पे कदम रखना और शिवाचारी का अर्थ है शिव बाबा के बोले हुए महावाक्यों को फॉलो करना। तो बाबा ने कहा चेकिंग करो, ब्रह्माचारी और शिवाचारी बने हैं। और बाबा ने कहा कि जब ऐसा बन जाएंगे तो उसकी निशानी होगी हमेशा सुख की सैया पर होंगे। तो देखो जब आप सुख की सैया पर होते हैं तो जो शत्रु हैं वो भी सेवाधारी बन जाते हैं। और फिर बाबा ने एक यादगार चित्र को याद किया, विष्णु जी क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हुए हैं। तो बाबा ने कहा ये शेष सैया नहीं है, ये सुख सैया है, क्योंकि वो हर्षित और जो पांच शत्रु थे वो उनके सेवाधारी बनके उनको छत्र छाया किए हुए। लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि आप इतने हर्षित क्यों हैं? तो उन्होंने कहा मैं गीता ज्ञान का स्मरण करके हर्षित हो रहा हूं। तो ये हमारा चित्र है, जो पांचों शत्रु हैं वो हमारी सेवा में है और हम उनकी सेवा ले रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। बाबा ने कहा जो किसी की कोई चीज खो जाती है तो चेहरा भी खोया खोया हो जाता है, लोग पूछते हैं भाई तुम्हारा चेहरा खोया खोया क्यों है, तो जब पवित्रता खो जाती है तो चेहरा खोया खोया हो जाता है और जब पा जाते हो तो चेहरा पाया पाया हो जाता है। हम भी कहते हैं हमने जो पाना था सो पा लिया। तो आज हम देखेंगे कि ये जो पांच शत्रु हैं इनके मोटे रूप को तो हमने जीत लिया, लेकिन इनके जो सूक्ष्म रूप है, इनके जो बाल बच्चे हैं, बाबा ने कहा बड़े तो अच्छे नहीं लगते लेकिन जो छोटे हैं वो अच्छे बहुत लगते, प्यारे बहुत लगते, तो इनका वो छोटा रूप कौन सा है जिसे कई बार हम ब्रह्म में प्रेम कर लेते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जैसे कोई बड़ा आदमी मर जाए तो उसके दूर दूर के रिश्तेदार आकर के उसकी प्रॉपर्टी पे हक जमाते, तो रावण बड़ा आदमी है उसको तो मार दिया, लेकिन उसके भाई भतीजे दूर दूर के रिश्तेदार वो आकर के हक जमाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इन पांचों के दूर दूर के रिश्तेदार कौन कौन हैं और कैसे हक जमाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लोभ। लोभ को जीत लिया, धन का लोभ नहीं है, किसी चीज का हम संग्रह भी नहीं करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा लोभ का सूक्ष्म रूप है आवश्यकता। आवश्यकता आवश्यकता कहते कहते व्यक्ति कितनी चीजें इकट्ठी कर लेता है, ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बाबा ने कहा आवश्यकता कभी अनलिमिटेड थोड़े होती है, उसकी भी तो एक लिमिट होती है ना, और अगर वो लिमिट को क्रॉस कर जाए तो आवश्यकता नहीं, वो इच्छा और तृष्णा बन जाती है। तो बाबा ने कहा चेक करो, आवश्यकता के नाम पे संग्रह तो नहीं हो रहा, आवश्यकता के नाम पे इंद्रियों की तुष्टि का प्रयास तो नहीं हो रहा, और ये जो मानवीय इंद्रियां हैं इनकी नेचर ये कभी संतुष्ट नहीं होती, बाय नेचर ये ऐसी हैं, जैसे आग में घी डाला जाए तो वो कभी बुझती नहीं है, तो इंद्रियां कभी भी तुष्ट नहीं होती। इसलिए कहते हैं आप भया बूढ़ा तृष्णा भई जवान, भर्तृहरि ने कहा भोगाना भुक्ता वही में वो भुक्ता। तो ये भोग कभी भी बूढ़े नहीं होते, आदमी बेशक बूढ़ा हो जाए, आवश्यकता में और लोभ में क्या अंतर है इसको जानने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक आंगन है जिसकी 5 फीट ऊंची दीवार है और दीवार पे एक पंछी आके बैठता है, और हमने आंगन के बीचों बीच एक एप्पल रख दिया, पंछी को भूख लगी थी, वो उड़ के आया, उसने एप्पल खाया, पेट भर गया और उड़ गया। तो ये पंछी की क्या थी, आवश्यकता थी, रोटी कपड़ा मकान ये हमारी आवश्यकता है, पर रोटी भी कितनी, कपड़ा भी कितना, मकान भी कितना। तो आगे चलते हैं, अगले दिन हमने क्या किया, आंगन में एक सेब खुला रखा और एक को पिंजरे में डाल के रखा। अगले दिन भी पंछी आया, उसने जो खुला सेब रखा था उसको चांच मार के खाया, पेट भर गया, अब उसे उड़ जाना चाहिए जैसे वो कल उड़ गया था, लेकिन नहीं, पेट भरने के बाद भी वो उड़ा नहीं, बाजू में जो पिंजरे में सेब रखा है उसको वो घूर घूर के देख रहा और पिंजरे के चारों ओर फुदक रहा है, कभी इधर से सलाख में चोंच मारता है, कभी इधर से सलाख में चोंच मारता है, कभी उड़ के पिंजरे के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, दाएं बाएं फेरी पहन रहा, ये क्या है। पेट भरने के बाद भी अगर हम खाद्य पदार्थों को घूर घूर के देखते हैं, पेट तो भर गया, आवश्यकता तो पूरी हो गई, लेकिन फिर भी उनकी याद आ रही है, मन ही मन उनकी तस्वीर बन रही है, फिर से वही खाने की इच्छा हो रही है। तो ये क्या है? पकड़ेगी, कुत्ता पकड़ेगा, कोई मनुष्य आके बंदी बनाएगा, और अगर ये उड़ जाता तो स्वतंत्र रहता तो मनुष्य भी कब कब पिंजरे का कैदी बनता है, कब कब ट्रैप में आ जाता है, कब कब बंधन में बंध जाता है। जब उसको कोई इच्छा खींचती है, तृष्णा खींचती है, उसे प्राप्त करने के लिए वो कई प्रकार के बंधनों में बंधता है। आज दुनिया की जेलों में जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे इन्हीं इच्छाओं के वशीभूत जेल में गए, और जो लोग जेल में नहीं है लेकिन घर में रहते हुए भी कैदी जैसा जीवन व्यतीत करते, वो भी इच्छाओं की जंजीर से जकड़े हुए। और अगर एक योगी भी अनासक्त वृत्ति को भूल करके, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को भूल करके इच्छाओं के वशीभूत हो जाता है, तो वो भी ऊपर से स्वतंत्र दिखते हुए भी मन के कई बंधनों में बंध जाता है। तो ये पहला सांप है जिसे हमें छत्र छाया बनाना है। हमारा शत्रु नहीं, चीजें हमारी शत्रु नहीं, लोग हमारे शत्रु नहीं, बल्कि हमारे सेवक, और हम उनकी छत्र छाया में हर्षित सुख की शैया पर है। फिर दूसरा शत्रु कौन सा है? मोह। मोह के लिए बाबा ने कहा, सूक्ष्म रूपे अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगे तो सब कुछ अच्छा लगे, 36 प्रकार का व्यंजन भी अच्छा लगे, सूखी रोटी और गुड़ भी अच्छा लगे, चत्तियों वाला कपड़ा भी अच्छा लगे और बढ़िया कपड़ा भी अच्छा लगे, इसको कहेंगे सम भाव, सम दृष्टि। लेकिन ये पर्टिकुलर चीज ही अच्छी लगती है, यही भोजन अच्छा लगता है, यही कपड़ा अच्छा लगता है, यहाँ रहना ही अच्छा लगता है और कहीं मन ही नहीं लगता, और जब तक ये अच्छी लगने वाली चीज नहीं मिलेगी तब तक चैन नहीं आएगा, तो ये वस्तु से, पदार्थ से मोह है। और जहाँ मोह है वो कभी मोहन नहीं बनेगा, मोहन के दर्शन नहीं करेगा, मोहन की नगरी में नहीं जाएगा। फिर वो राम की नगरी में जा सकता है, लेकिन मोह वाला मोहन की नगरी में नहीं जाएगा, यानी कि सूर्यवंशी नहीं, वो चंद्रवंशी ही बनेगा। तो हर व्यक्ति अच्छा, हर वस्तु अच्छी, हर स्थान अच्छा, हर प्रकार का भोजन अच्छा, इसलिए कहते हैं सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, और खींच लिया सो खून बराबर, कह गए संत और ज्ञानी। जो चीज सहज मिल जाए वो दूध जैसी, और जो मांग मांग के मिले, मेरे लिए वो चीज लाए कि नहीं लाए, क्यों नहीं लाए, अरे मुझे वो चीज कब मिलेगी, मांग मांग के मिले वो पानी बराबर, और मांगने से भी आगे जो खींच तान करके मिले, लड़ झगड़ के मिले, रूठ के रूठा के मिले, तो वो चीज हो गई खून बराबर। तो सहज मिले सो दूध बराबर, जो कुछ मिले वो सरलता से मिले, सहजता से मिले, संकल्प चला चला के मिले, दुखी हो के मिले,
तो वो दूध बराबर नहीं होती है। फिर उसको अगर हम यूज भी करते हैं तो उतना सुख नहीं मिलता, उसकी कीमत पानी जैसी हो जाती है। और फिर तीसरी बुराई, उसका सूक्ष्म रूप क्रोध, ये तीसरा सांप है। इस सांप को भी मित्र बनाना है ताकि ये छत्र छाया बने और हम इसकी छत्र छाया में हर्षित रहे, ये हमें काटे नहीं, अपना जहर फैलाए नहीं। तो बाबा जी का क्रोध का सूक्ष्म रूप है घृणा। कई बार कई ऐसी व्यक्ति होती हैं जिनको देखते ही मन में हलचल होती है, संकल्प चलते हैं, जो हमें ज्ञान स्वरूप स्थिति से नीचे ले आते हैं, हमारी एकाग्रता को भंग कर देते। तो मन में आता है कि इस आदमी से तो किनारा कर लो तो ही अच्छा, अपनी स्थिति खराब करने से अच्छा इससे दूर ही रहो। बाबा ने कहा ये सूक्ष्म घृणा भाव है। एक होता है न्यारा बन के प्यारा बनना, लेकिन ये वो वाली स्टेज नहीं है, ये घृणा भाव से दूरी बना के रखना है। बाबा ने कहा जैसे क्रोध अग्नि है ऐसी घृणा भी अग्नि है, क्रोध की अग्नि जलाती है, ये घृणा की अग्नि भी जलाती है। और फिर जब मन में घृणा आती है तो अंदर में क्या आता है, घृणा आती है तो अंदर में आता है कि ये तो है ही ऐसा, इसको तो कभी बदलना है ही नहीं। तो बाबा ने कहा घृणा भी करते हो और साथ साथ श्राप भी देते हो। तो ब्राह्मणों का कार्य श्राप देना नहीं है, ब्राह्मणों का कार्य तो शुभ भावना और शुभ कामना से ऊंचा उठाना। तो श्रापित नहीं करो, किसी को फाइनल सर्टिफिकेट नहीं दो, लेकिन शुभ भावना शुभ कामना से उसको ऊंचा उठाओ। किसी को नीचा गिराना हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जो दूसरे को नीचे करेगा वो खुद भी नीचे हो जाएगा और जो उठाएगा वो खुद भी उठ जाएगा। तो बाबा ने कहा इस सूक्ष्म घृणा के स्थान पे शुभ भावना शुभ कामना। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण जरूर है, तो जैसे बाबा ने हर बच्चे की विशेषता देखी ऐसी विशेषता देखनी है। बाबा ने कहा एक मुरली में कि मैं बच्चों की माला बना रहा हूँ और माला भी नीचे से बनानी चालू की है, यानी कि प्यादों की माला सबसे बनाई पहले बनाई। तो बाबा ने कहा आज बाबा अपने प्यादे ग्रुप के बच्चों को देख रहे थे और देख रहे थे इनमें भी कितने गुण है। सबसे बड़ा गुण तो ये है कि इस दुनिया में इन्होंने भगवान को पहचान लिया और दूसरे नंबर पहचान के आधार पे मेरा बाबा कहते हैं। और इसी विशेषता ने इनको बाबा का बनाया, ब्राह्मण परिवार में चलाया। तो बाबा ने कहा माला का अंतिम मण का भी विशेषता संपन्न है, उसमें भी गुण है। तो हरेक की विशेषता देखो, निर्गुणी यहाँ कोई भी नहीं है। और जब गुण देखेंगे तो घृणा खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति एक गुरुजी के पास आया, गुरुजी ने कहा बेटा तुम सबके गुण देखा करो। वो कहता है संसार में गुण है ही नहीं, सब अवगुणी आदमी, आप कहते हो सबके गुण देखा करो, ये तो बहुत मुश्किल साधना है। थोड़े दिन आश्रम पे रहा और चला गया। थोड़े दिन बाद लौटा, कहता गुरुजी बहुत मुश्किल काम है गुण देखना। तो गुरुजी उसे हाथ पकड़ करके और बगीचे में घुमाने लगे। तो वो कहता है कि गुरुजी देखो ये गुलाब के फूल कितने सुंदर खिले, इनमें कौन सी खाद डाली है। गुरुजी को जैसे उपदेश देने का मौका मिल गया, उन्होंने कहा देखो बेटा गुलाब में सबसे गंदी खाद डलती है, लेकिन गुलाब का पौधा क्या करता है, उससे नफरत नहीं करता, कभी ये नहीं कहता कि मेरी जड़ों में सेंट डालो तो ही मैं अच्छे गुलाब के फूल दूंगा। वो गंदी से गंदी खाद को भी खुशबू में कन्वर्ट कर लेता है और फूलों का राजा बन जाता अपने इसी गुण के आधार पे, तो इस दुनिया का राजा भी कौन बनेगा? आने वाली सतयुगी दुनिया का विश्व महाराजन पिता श्री ब्रह्मा बाबा बनते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन लोगों की जो गंदी खाद थी उसको खुशबू में बदला। लोगों ने बाबा पे कीचड़ उछाला, लेकिन बाबा ने उसको खुशबू में परिवर्तित कर दिया। ना उछालने वाले से नफरत की और ना अपने मन को कभी मायूस होने दिया। तो जैसे गुलाब में कला है, गुरुजी ने उसको सिखाया कि तुम भी ऐसे अपशब्दों को, अफवाहों को, ग्लानी को, निंदा को खुशबू में कन्वर्ट करना सीखो। तो बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना, उसका सूक्ष्म रूप घृणा नहीं करना, लेकिन गुण देखना। और अगर कोई हमारे ऊपर भी अवगुणों से वार करे तो उस अवगुण को भी गुण में बदल लेना। एक बार एक शहर में एक महात्मा जी को आना था, तो गांव के कुछ ऐसे लोग थे जिनको कोई काम धंधा नहीं था, खाली घूमते थे। तो उन लोगों को तो टाइम पास के लिए एक मनोरंजन चाहिए था। उन्होंने कहा देखो महात्मा जी आने वाले हैं, अपन एक मनोरंजन का तरीका ढूंढते हैं। मीटिंग की, सबने अपनी अपनी राय बताई और अंत में एक राय फाइनल हो गई कि महात्मा जी जैसे ही शहर में प्रवेश करेंगे उनको हम टूटे हुए जूतों की माला पहनाएंगे, और जब महात्मा जी गुस्सा करेंगे तो हमें खूब मजा आएगा। फाइनल हो गई बात, नियत समय पे महात्मा जी आए और ये सब लोग स्वागत के लिए खड़े थे। महात्मा जी तो आनंद से मुस्कुराते हुए आ रही थी, और इनमें से जैसे ये सामने आए तो इनका जो लीडर था उसके हाथ में टूटे हुए जूते जो उन्होंने घरों घरों से मांगे थे, उनकी लंबी सी माला बना रखी थी और वो महात्मा जी के गले में डाल दी। माला इतनी लंबी थी गले से लेके पांव तक आ गई, और ये एक दो का मुंह देख रहे थे अभी महात्मा जी गुस्सा करेंगे मजा आएगा, लेकिन महात्मा जी जोर से खिलखिला के हंस पड़े, ऐसे हंसे जैसे उनके गले में सोने की माला डाली। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा जी को गुस्सा क्यों नहीं आया, शायद उन्होंने माला को देखा नहीं है, ये हमारा ही मुंह देखने में लगे। तो एक धीरे से जाके कान में कहता है महात्मा जी आपको पता है आपके गले में जो माला डाली है ना, ये टूटे हुए जूतों की माला है। महात्मा जी और जोर से हंसे, उनको तो समझ में ही नहीं आया ये हो क्या गया, हमने सोचा क्या था। बोला चलो महात्मा जी को प्रवचन के लिए कहते, अच्छा महात्मा जी आप प्रवचन तो कीजिए, कुछ उपदेश तो दीजिए। तो महात्मा जी बैठ गए सामने आसन पे, और ये सब लोग सामने बैठ गए और भी गांव के बहुत सारे लोग थे। तो महात्मा जी ने अपना प्रवचन शुरू किया, भाइयों और बहनों आपके गांव में आके मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं तो गांव-गांव में उपदेश देता हुआ घूम रहा हूँ, अभी तक मेरे 50 गांव पूरे हो चुके, ये 51वां गांव है। हर गांव में मैंने नई नई बातें देखी। आपको बताऊं मैं इससे पहले एक गांव में गया था तो वहां लोगों ने मेरे गले में फूलों की माला डाली, मैं समझ गया ये मालियों का गांव है। उसके बाद मैं अगले गांव में गया तो मोतियों की माला डाली, मैं समझ गया ये सोनियों का गांव है। और आप लोगों ने मेरे गले में ये जूतों की माला डाली, मैं समझ गया ये मोचियों का गांव है। तो किसी ने बुराई देने की कोशिश की, क्रोध दिलाने की कोशिश की, कहते हैं अगर किसी ने आपको क्रोध दिला दिया तो वो जीत गए, लेकिन उसने लाख कोशिश की फिर भी हमें क्रोध नहीं आया तो हम जीत गए। तो बाबा ने कहा बुराई को भी अच्छाई में बदल डालो। उसके बाद नंबर 3, अहंकार। अहंकार के मोटे रूप को तो जीत लिया, लेकिन इसका भी एक छोटा सा बाल बच्चा है, इतना छोटा है, पकड़ में ही नहीं आता। जैसे वो सांप का छोटा सा बच्चा होता है ना, दिखता ही नहीं। बड़ा सा सांप हो तो दिख जाता है किधर गया, वो छोटा सा बच्चा दिखता ही नहीं। तो इसका छोटा बच्चा है मेरापन। और बाबा ने कहा जब मेरापन आता है तो अंदर में क्या विचार चलते हैं, मेरी विशेषता, मेरा गुण, मेरी खूबी, मेरा हुनर, मेरी योग्यता। और फिर मन में आता है देखो मैं कितना योग्य हूँ, लोग तो मेरी इतनी महिमा करते हैं पर ये मुझे पूछते ही नहीं, और मेरे में कितनी विशेषता है लेकिन मेरी विशेषता से काम ही नहीं लेते हैं, इनकी शायद पहचानने की आंख ही नहीं है। कई बार ऐसे मायूस हो जाती है। बाबा ने कहा जब आपका मर्जीवा जन्म हो गया तो ये मर्जीवा जन्म दिया किसने, भगवान ने दिया, और मर्जीवा जन्म की जो विशेषता है वो भी भगवान ने दी। तो भगवान अपने बच्चे की किस विशेषता को कहाँ लगाना है, कब लगाना है जानता है। लेकिन आप धैर्य तो रखो, पर कई बार हम इतने उतावले हो जाते हैं कि अपनी मन मत से अपनी विशेषता को यूज करना चाहते हैं। वो दी हुई तो बाबा की है लेकिन उसमें मेरा मेरा मेरी मेरी आ जाता है। और बाबा ने कहा जब मेरा और मेरी आता है तो वर्री आ जाती है, वर्री माने चिंता। तो क्या भगवान पे निश्चय नहीं है कि मैं उसका बच्चा हूँ और वो मेरी खूबी को यूज करेगा, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसका हूँ। अगर वो मुझे अपना सकता है तो मेरी खूबी को नहीं अपना सकता क्या? अपनाएगा उसको? अगर मेरी जरूरत हो, मेरी खूबी की भी जरूरत, खूबी दी भी उसी ने है लेकिन कब यूज करना है ये वो जानता है। तो अगर बाबा पे अटूट निश्चय है तो ना दिल शिकस्त होंगे ना हलबेलापन आएगा। एक बार एक नट था तो वो तार पे चल रहा था, एक धागा इधर बिल्डिंग में बांधा था, रस्सी इधर बिल्डिंग में बांधी थी, एक रस्सी इधर बिल्डिंग में बांधी थी, और नट रस्सी पे चल रहा था, हाथ में एक बांस था और कंधे पे उसने अपना बेटा बिठा रखा था। और इतनी भीड़ थी, सांस रोक के लोग उसको देख रहे थे, और वो एकदम सधे कदमों से चल रहा था तार के ऊपर, वो रस्सी पतली सी रस्सी के ऊपर, और लोगों के भीतर तो जैसे एक जिज्ञासा थी क्या होगा ये पार भी उतरेगा, और वो पार उतर गया। पार उतर गया तो लोगों ने उसको बहुत बधाइयां दी, किसी ने उसके साथ सेल्फी खिंचवाई, किसी ने हाथ मिलाया। तो नट माइक पे आया, कहता है आप लोगों को विश्वास है क्या कि मैं दोबारा भी इस रस्से पे चल सकता हूँ? सबने कहा हाँ, आप एक बार चले तो दोबारा भी चल सकते हो। बोला सचमुच पक्का विश्वास है कि मैं शुरू से लेके आखिरी तक दोबारा भी यात्रा पूरी कर जाऊंगा? बोला हमें पूर्ण विश्वास, शर्त लगा लो आप दोबारा यात्रा पूरी कर सकते। तो नट कहता है ठीक है मैं दोबारा यात्रा पूरी कर सकता हूँ, आपको पक्का विश्वास है ना, तो आप में से कोई अपना बेटा दे दे जिसे मैं कंधे पे बिठा के लेकिन जैसे ही नट ने कहा तो सारे लोग चुप हो गई, कोई बेटा देने को तैयार नहीं हुआ। तो अब यहाँ दो बातें हैं, नट के ऊपर विश्वास तो है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं बिलीव, हम नट पे बिलीव तो करते हैं पर नट पे ट्रस्ट नहीं है। एक है बिलीव, एक है ट्रस्ट।
नट पे बिलीव तो है लेकिन ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है। तो ऐसे ही भगवान पे बिलीव तो है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारा दिया हुआ है, मेरी खूबियां भी तुम्हारी हैं, मेरे गुण भी तुम्हारे हैं, और तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो, तुमको जब जरूरत है तब यूज कर लेना, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। इसको कहते हैं ट्रस्ट। ये ट्रस्ट नहीं है। बीच बीच में ख्याल आते हैं, बाबा मैं इतना लायक हूँ फिर भी मैं आगे क्यों नहीं हूँ, मेरे में इतने गुण हैं फिर भी मुझे पूछा क्यों नहीं जाता, मैं इतनी सेवा करता हूँ बाबा फिर भी मेरी कभी महिमा नहीं होती है, वो फुलाने की बहुत महिमा होती है, उसको बहुत आगे रखा जाता है। तो बिलीव तो है भगवान मेरा है, वो जो करेगा ठीक करेगा, लेकिन पल पल जो घड़ियां गुजर रही हैं उन पे ट्रस्ट कि ये घड़ी ड्रामा की इसी प्रकार इसकी नींद है और इसी प्रकार ये ठीक है। तो जिसके भीतर ट्रस्ट है यानी कि जो निश्चय बुद्धि है, उसके मन में कभी भी मेरा मेरी मैं कंपेरिजन ये सब चीजें नहीं आती। तो बाबा ने कहा मेरी की निशानी है वर्री और इस वर्री के दो साथी और हर्री और कर्री। वर्री माना चिंता, हर्री माना जल्दबाजी और कर्री माना बहुत मसालेदार भोजन। ये तीनों चीजें त्याज्य। बाबा ने कहा जब वर्री आए तो सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, जगह जगह आजकल तो लिखा रहता है तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूं ना। तो जब बाबा बैठा है और बाबा कहता है तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ, सारा बोझ मुझे दे दो और मैं भी बोझ को अपने पास नहीं रखूंगा, जैसे सागर में सब नदियां कीचड़ा डालती हैं तो सागर कीचड़े को अपने पास थोड़े रखता है, उसको किनारे फेंक देता है, तो ऐसे बाबा भी उस कीचड़े को भस्म कर देता है। ज्ञान सूर्य है ना, लेकिन आप देना तो सीखो, तो वर्री नहीं करो। एक बार एक कारपेंटर था तो वो काम ढूंढ रहा था, एक सेठ जी ने उसे काम दिया कि तुम ये लकड़ी चीरो, और जब लकड़ी चीरने लगा तो ऐसे आरी लगाई थी कि आरी के दो टुकड़े हो गए, तो उदास होके बैठ गया, ये क्या हुआ, आरी टूट गई, आज तो सारा दिन की दिहाड़ी भी गई, ऐसे मन में कई चिंता की बातें तो आई। इतनी देर में सेठ जी घूमते घूमते आए, पूछने लगे भाई क्या बात हुई, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। उसने कहा सेठ जी मेरी आरी टूट गई। तो बोला देखो आरी टूट गई तो आज की दिहाड़ी तो तुमको मिलेगी नहीं, काम तो होगा नहीं, इससे अच्छा तुम घर चले जाओ, यहाँ बैठे क्या करोगे, और मैं तुम्हारे घर की तरफ ही चल रहा हूँ, कहो तो गाड़ी से छोड़ दूंगा। ठीक है सेठ जी छोड़ देना। सेठ जी के पीछे गाड़ी में बैठ गया, घर आया, वो उतरा, उसने कहा सेठ जी आप हमारे घर में भी चरण रख दो ना, मेरे घर के लोग खुश हो जाएंगे। सेठ जी मान गए, दोनों गाड़ी से उतरे, घर में प्रवेश होने लगे तो घर के आगे एक पेड़ था बहुत बड़ा, इस कारपेंटर ने अपने गले से कुछ निकाला और पेड़ की एक डाली पे ऐसे टांग दिया। फिर घर में गया तो अपने बच्चों से बहुत प्यार से मिला, बूढ़ी माँ से बहुत प्यार से मिला, सेठ जी को सबसे मिलाया, फिर सेठ जी के लिए चाय बनवाई, सेठ जी की खूब खातरी की, और इतना घुल मिल गया, इतना हंस रहा था, खुश हो रहा था। आधे घंटे के बाद सेठ जी कहते भाई मैंने चाय भी पी ली और अब मुझे आगे जाना है। तो ये उसको छोड़ने बाहर आया, बाहर आया तो सेठ जी कहते सारी बातें समझ में आई, एक बात समझ में नहीं आई। बोला कौन सी। बोला ये बात समझ में नहीं आई कि जो बाहर पेड़ था उसके ऊपर तुमने गले में से क्या निकाला और क्या टांगा, मुझे तो तुम्हारे गले से कुछ निकलता दिखा नहीं और पेड़ पे भी मैंने देखा कोई चीज टंगी हुई नहीं थी। बोला सेठ जी मैं जब बाहर काम धंधे से आता हूँ ना रोजाना, तो आपको पता है काम धंधे की बहुत चिंताएं होती, देखो आज ही मेरी आरी टूट गई तो मुझे थोड़ी चिंता तो थी, लेकिन मैं क्या करता हूँ जो घर से बाहर की चिंताएं होती है ना उनको घर के अंदर नहीं ले जाता, तो ये मैंने चिंता वृक्ष बना रखा है, वर्री ट्री,
सारी चिंताएं गले से निकाल के मैं इस पेड़ पे टांग देता हूँ और चिंता रहित होके घर में जाता हूँ। बच्चों से प्यार से मिलता हूँ, माँ से, पत्नी से, भाइयों से, किसी को पता ही नहीं पड़ता कि आज मेरे साथ धंधे में क्या हुआ था। और फिर जब अगले दिन काम पे निकलता हूँ तो अपनी मालाएं फिर पहन लेता हूँ, क्योंकि मुझे याद तो रहेगा ना कि ये काम पूरा करना है, ये काम पूरा करना है। अगर उन चिंताओं वाली बातों को याद ही ना रखूं तो लापरवाह हो जाऊंगा। तो जैसे मेरी यारी टूट गई तो मैंने वो बाहर पेड़ पे टांग दी चिंता, मैं सारा दिन खुश रहूंगा, कल सुबह थोड़ा जल्दी निकलूंगा, नई आरी लाऊंगा और उसके बाद आपके पास काम पे आऊंगा, मेरा काम भी बन जाएगा और घर में सब लोग मेरे से संतुष्ट भी रहेंगे, मैं भी संतुष्ट रहूंगा। तो हम सबको भी एक वर्री ट्री बना लेना चाहिए। वैसे हमारी वर्री ट्री क्या, हमारा तो सागर है, शिव बाबा के ऊपर हम सारी वर्रीज डाल देते हैं और वो कहता है अच्छा बच्चे चिंता मुक्त रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। तो शिव बाबा ऐसा है, ऐसा किस किस को अनुभव है, हमने अपनी सब चिंताएं बाबा को दे दी, ना हम कभी बच्चों के आगे चिंतित दिखते हैं, ना कभी साहब के आगे, कहीं भी हमारे चेहरे पे चिंता आती ही नहीं। दोबारा हाथ खड़े करेंगे, जरा थोड़े हाथ खड़े हुए, इसका मतलब चिंता वाले लोग बैठे हैं अभी, कई हाथ तो बिल्कुल नहीं उठ रहे। बहुत अच्छा है, जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो आज से ये दृढ़ संकल्प करें कि बाहर की चिंताएं घर में नहीं ले जाना, क्योंकि बाहर की चिंताएं घर में ले जाएंगे तो ना तो हमारा घर में योग लगेगा और हम बाकियों का योग भी तोड़ देंगे, और अगर सेंटर पे चिंता ले गए तो वहां भी लोग पूछेंगे भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ। और बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कोई आपसे पूछे आपको क्या हुआ और फिर सहानुभूति दिखाए तो उसमें भी उसका और आपका समय जाता है, इतना समय भी आपका बुद्धि योग बाबा से टूटता है, तो ये भी बोझ चढ़ता है। किसी को मौका ही नहीं मिलना चाहिए कोई हमसे पूछे कि आपको क्या हुआ, सदा हम हर्षित दिखे उसे। उसके बाद हर्री, हर्री माने जल्दबाजी, और कहते हैं जो जल्दबाजी करता है वो काम को बिगाड़ता है, पहले जल्दबाजी करता है और फिर जब काम बिगड़ता है तो उसी में कई घंटे खराब करता है। एक बार एक महिला बस में सफर कर रही थी, उसकी गोदी में एक बच्चा था, वो बच्चा रोने लगा, महिला ने उसको बहुत बहलाया, बहुत प्यार किया, टोपी निकाल के दी, पर बच्चा रोने से चुप भी नहीं हुआ, सारी सवारियां पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। तो जब चुप नहीं हुआ तो महिला ने क्या किया, जोर से बच्चे को थप्पड़ लगाया, और जब थप्पड़ लगाया तो बच्चा और तेज रोया, और जब और तेज रोया तो वो अपनी सीट पे खड़ी होके और उसको फिर चुप कराने लगी, और इस बार चुप कराने में उसको पहले से भी बहुत लंबा समय लगा। तो बच्चे को थप्पड़ क्यों लगाया उसने, इसलिए कि अंदर धीरज खत्म हो गया था। हम क्या करते हैं, जब अंदर धैर्य कम हो जाता है तो बाहर बहुत जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में काम और बिगड़ जाता है। बच्चा चुप थोड़े हुआ थप्पड़ लगने से, वो और तेज रोया और फिर उसे डबल मेहनत करनी पड़ी। तो जल्दबाजी का कारण क्या है, अधीरता, और अधीरता में समय, शक्ति, ऊर्जा, धन बहुत नष्ट होते। तो हर्री नहीं करना है। दूसरा हर्री का एक एस्पेक्ट है, जो बहुत हर्री करते हैं उनको रोग लग जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं जो हृदय रोग है उसका एक मूल कारण है व्यक्ति की जल्दबाजी, समय से पहले उसे सब कुछ तैयार चाहिए। जैसे अलादीन का चिराग है ना, बटन दबाया और सब कुछ हाजिर। तो मनुष्य सोचता है बटन दबाओ भोजन हाजिर, बटन दबाओ बिस्तर हाजिर, बटन दबाओ रेलगाड़ी हाजिर, बटन दबाओ फाटक खुल जाए। ये खड़ा क्यों होना पड़ता है, रेलगाड़ी देर क्यों लगा रही है, भोजन बनने में टाइम क्यों लग रहा है, ये पानी गर्म क्यों नहीं हो रहा है जल्दी से। तो अलादीन का चिराग तो है नहीं हाथ में, समय तो लगेगा और उसमें हम धैर्य खो देते हैं, उसमें कई चीजें टूटती हैं फूटती हैं और कई बार शब्द भी टूटे फूटे अंदर से निकलते हैं और कई बार फिर संबंध टूटते हैं। तो बाबा ने कहा जल्दबाजी नहीं करो, हर चीज का समय होता है और उसके बाद है करी। करी का मतलब है बहुत मसालेदार भोजन, ये भी बहुत नुकसानकारक। आजकल आप सुन रही हैं ना एक कोरोना नाम का वायरस है, उसका कारण क्या है, उसका कारण भी गलत खान पान है। जैसे कार है तो पेट्रोल वाली और आप उसमें डीजल डालेंगे तो इंजन क्या करेगा, पहले थोड़ी आवाज करेगा फिर बंद पड़ जाएगा। तो मनुष्य की आत्मा जो देवी घराने की है उसको तो बहुत रिफाइंड भोजन चाहिए, लेकिन व्यक्ति मिलावटी भोजन खिलाता है, कभी उसमें केमिकल है, कहीं उसमें मसाले हैं, कहीं उसमें तेज लाल मिर्च है, कहीं उसमें कोई तामसिक और अंश है, तो इंजन ही खराब हो जाता है। पहले गाड़ी घर्र घर्र करती है और उसके बाद बंद पड़ जाती है, एक रोग दूसरा रोग तीसरा रोग। तो अगर इस इंजन को ठीक चलाना है तो कम खाना है, सात्विक खाना है, समय पर खाना है, बाबा की याद में खाना है, अपने ही हक का खाना है और भूख से थोड़ा कम खाना है और बांट करके खाना है। कहते हैं बंड खाओ खंड खाओ, जो बांट के खाता है वो मानो हमेशा मिठाई खाता है। हेल्थ के अनुकूल खाना है, मौसम के अनुकूल खाना है। बताते हैं कि एक आयुर्वेद के बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया और सब शिष्य अपने अपने काम में लग गए। तो एक बार दोबारा उसने शिष्यों को बुलाया और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि भाई स्वस्थ कौन है, इसका उत्तर बताओ। एक शिष्य ने कहा जो च्यवनप्राश खाता है वो स्वस्थ है, किसी ने कहा जो शिलाजीत खाता है वो स्वस्थ है, किसी ने कहा जो बहुत फल जूस खाता है वो स्वस्थ है। एक शिष्य ने उत्तर दिया स्वस्थ वो है हितमुख रितमुख और मितमुख, स्वस्थ वो है जो मितमुख अर्थात अल्प खाता है, थोड़ा खाता है, मित माना थोड़ा, और रित अर्थात जो सात्विक खाता है वो है स्वस्थ, और हित अर्थात जो ऋतु के अनुकूल खाता है। तो स्वस्थ कौन है, बाबा ने कहा बाबा की याद में खाओ, सात्विक खाओ, समय पर खाओ। तो जो करी है उसका भी त्याग करना है। और उसके बाद पांचवा सांप, जिसको छत्र छाया बनाना है, सेवाधारी बनाना है, शत्रु नहीं सेवाधारी। हमारा कोई शत्रु नहीं, हम तो विश्व मित्र हैं, हमारे बाबा का कोई शत्रु नहीं तो हमारा कोई शत्रु कैसे हो सकता है। तो ये पांचवा सांप है उसको भी मित्र बनाना है। और ये पांचवा है काम विकार, बाबा ने कहा काम विकार को सबने जीत लिया, सब ब्रह्मचारी बाबा के बच्चे हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा बच्चा है, सूक्ष्म रूप है, उसका नाम है लगाव। लगाव झुकाव, झुकाव का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ झुक जाना। बाबा ने कहा आप तो ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो, सारी दुनिया को अपनी तरफ झुकाने वाले हो, क्योंकि हम सब देवता हैं और जब हमारे मंदिर में जैसे कोई सेवा में बहुत सहयोगी है, मददगार है, किसी के साथ स्वभाव मिलता है, किसी में कोई विशेष विशेषता है, गुण है, या कोई समय समय पे थोड़ी एक्स्ट्रा मदद करता है, तो उसके साथ लगाव हो जाता है। फिर क्या होता है, जब कोई भी बात आती है ना, तो सबसे पहले वो लगाव वाला ही याद आता है। अगर वो होता तो ये काम हो जाता। बाबा ने कहा मेरी याद नहीं आती, उस व्यक्ति की याद आती है। और बाबा ने कहा फिर क्या होता है, भगवान मेरा सहारा है ये भूल जाते हैं, वो व्यक्ति मेरा सहारा है ये मन में बैठ जाता है। और जब किसी व्यक्ति को सहारा बनाते हैं तो मौके पे व्यक्ति याद आता है, बाबा याद नहीं आता। और अगर दो चार सेकंड भी किसी व्यक्ति को याद किया तो फिर शिव बाबा से तो लिंक टूट गया, और टूटे हुए लिंक को दोबारा जोड़ना ये बहुत मेहनत का काम हो जाता है। बाबा ने कहा उस समय बच्चे ये भूल जाते हैं कि इसको सहयोगी बनाने वाले शिव बाबा है, ये जो मेरा सहयोग करता है, मदद करता है, इसमें जो गुण है, विशेषता है, हुनर है, इसको करवाने वाला शिव बाबा है। तो महिमा भी शिव बाबा की। अगर ये बाबा का बच्चा ना बनता तो इसमें ये गुण होता क्या? बाबा का बच्चा बना, बाबा ने गुण दिया, तो बार बार बाबा की तरफ ध्यान जाना चाहिए। थैंक्स बाबा, आपने ये गुणवान बच्चा सेवा के लिए दिया, आपने ये योग्यता वाला बच्चा सेवा के लिए दिया, तो बार बार बाबा का थैंक्स करो। बाबा ने कहा लगाव की निशानी है, अंदर में संकल्प आएगा, इसी से बात करना अच्छा लगता है, इसी से ही उठना अच्छा लगता है, इसी से ही बैठना अच्छा लगता है, इसी से ही ज्ञान सुनना अच्छा लगता है, इसी से ही सेवा करवाना अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा ये जो ही शब्द है ना, ये गड़बड़ है, ये दाल में काला है, ही नहीं आना चाहिए। सेवा करें तो सब करें। दो बातें होती हैं, एक होता है सहयोग, एक होता है सहारा। जैसे अपन भवन बनाते हैं तो लकड़ी की बल्ली लगाते हैं, ये बल्ली भवन का सहारा नहीं है, ये सहयोग है। और जैसे ही छत मजबूत हो जाएगी हम क्या करेंगे, बल्ली हटा देंगे। अब अगर बल्ली हमेशा ही लगी रहे तो इसका मतलब छत कमजोर है, तो कमजोर दूसरे का सहारा लेता है और जिंदगी भर उसके सहारे के आधार पे चलता है। लेकिन सहयोग की निशानी है सहयोग लिया और हटा दिया, जरूरत थी तो सहयोग लिया। जैसे कोई व्यक्ति एक बड़ा सा गट्ठर लेके खड़ा है, बाजू से एक राहगीर जा रहा है, उसको कहता है भैया जरा हाथ लगाओ, ये गट्ठर मेरे सिर पे रख दो, इसको कहेंगे सहयोग लिया। लेकिन उसको कहता है ये गट्ठर लेके मेरे साथ साथ चलो, तो वो तो सहारा है, उसके बिना वो चल ही नहीं सकता। तो जिंदगी के बोझ हमें खुद उठाने हैं, दूसरी आत्मा से हाथ लगवा करके मदद लिया जा सकता है उस बोझ को उठाने, लेकिन असली सहारा बाबा है। बोझ किसी आत्मा को नहीं देना, बाबा को देना है, बाबा को सहारा बनाना है। इंसान को अगर सहारा बना लिया तो वो कब धोखा दे दे बीच मझधार में, ये भी भरोसा नहीं। तो इसलिए सहयोग लो पर सहारा नहीं बनाओ। तो ये पांच जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी बाबा ने मुरली में चर्चा की, इनसे भी अंदर का लगाव खत्म, इनसे भी निवृत्ति। इस सीजन की जो पहली मुरली बाबा ने चलाई थी अक्टूबर में, उसमें कहा था, एक काम दिया था, बाप समान संपन्न और संपूर्ण। तो बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है तो अपनी बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है और इन सूक्ष्म बुराइयों से भी मुक्त होना है। और ये भी देखने में आता है कि जब हम कोई क्लास करते हैं, बात सुनते हैं, तो बहुत उमंग आता है और अपनी चेकिंग भी करते हैं कि सचमुच मुझे बदलना है, बदलना है। लेकिन बाद में वो संकल्प इतना फोर्स में नहीं रह पाता। तो बाबा ने कहा उसका कारण ये है कि संकल्प को बार बार पानी नहीं देते हो। बीज तो डाला लेकिन उसको बार बार पानी देना पड़ेगा, तब वो फलीभूत होगा, फल निकलेगा और उस फल को खाके आप शक्तिशाली बनेंगे। तो जो बातें हमने यहाँ पे सुनी वो अच्छी तो हमको लगी, लेकिन उनको बार बार रिवाइज करना है कि ये सूक्ष्म अंश है, इसे छोड़ना है, मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। जब हम किसी चीज में बार बार पानी डालते हैं तो उसकी वृद्धि होती है, यानी कि स्मृति का पानी, नहीं तो विस्मृत हो जाती हैं बातें। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इन बातों को बार बार स्मृति का पानी देंगे और बाबा की जो आश है उसको अवश्य पूरा करेंगे। ओम शांति।
पांडव शिव शक्ति से